आज की वाणी है ग्यारह जनवरी 1964 कार्ड चला है जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात। पिया बाप को कहा जाता है, बाप है परमपिता परमात्मा शिव, तो जो भी आत्माएं उनके साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है, जो उनके साथ नहीं है या कोई और धर्म पिता के ग्रुप में जाते हैं माना कन्वर्ट होने वाले हैं तो उनका बुद्धियोग तो कोई दूसरे देहधारियों के साथ लगा हुआ है, उनके लिए वो ज्ञान की बरसात नहीं क्योंकि ज्ञान जानकारी को कहा जाता है, जानकारी तो सच्चाई की होती है, झूठ की जानकारी तो होती नहीं है, तो जो सत्य है वो ही जाने नहीं होगी, तो जो सत्य की जानकारी है सत्य के ज्ञान की बरसात है वो उनके लिए है जो परमपिता परमात्मा के साथ जिनकी बुद्धि लगी हुई है, कोई दूसरों के साथ बुद्धि लगी हुई ना हो, क्योंकि औरों के साथ बुद्धि लगी हुई होगी तो ज्ञान में मैच्योरिटी जरूर होगी। जैसे सागर के ऊपर में बादल होते हैं तो बादल का बाप हुआ सागर, बादल बरसात बरसाते हैं तो पानी कहां से लेते हैं, सागर से लेते हैं। ऐसे ही ज्ञान सागर बाप है और जो बच्चे हैं वो बादल हैं, वो ज्ञान सागर बाप से ही सत्य ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो जो बादल सागर के साथ हैं उनके लिए बरसा, वो बादल ही पानी भरकर फिर बरसते हैं, तुम ही सागर के पास आते हो भरने के लिए, तुम ही माने और कोई भी है जो वो ज्ञान जल भरने के लिए सागर के पास नहीं आते, कोई और छोटे मोटे गड़े गड़ीचिया है, तालाब है, झीलें है, नदियां है, उनमें ज्ञान जल भरने के लिए जाते हैं। सागर के बच्चे तो बादल ही होते जो मीठा पानी खींच लेते हैं, क्योंकि सागर तो खारा भी होता है और सागर मीठा भी होता है, तो जिनकी बुद्धि बाप के साथ लगी हुई है उनकी बुद्धि में मीठा पानी भर जाता है, तो बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई खूब जोर से बरसते हैं बोड़ बोड़ कर देते हैं और कोई कम बरसते हैं, इतना बरसते हैं कोई बादल कि जैसे दुनिया पानी में डबडबा जाती है, तुम्हारे में भी ऐसे नंबर वाले, तो जो खूब जोर से बरसते हैं उनका नाम भी गाया जाता है। जैसे बरसात बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, ये भी ऐसे ही है, जो अच्छा बरसते हैं उनकी महिमा होती है, जो नहीं बरसते हैं उनकी दिल जैसे सुस्त हो जाती है, जब दिल सुस्त हो जाती है तो मनोत्साह खत्म हो जाता है, पेट भरेगा नहीं, पूरी हार न होने से पेट जाकर पीठ से जाकर लग जाता है। फेमल होता है तो मनुष्यों का पेट जाकर के पीठ से लग जाता है ना, कुछ खाने को मिलता नहीं। फेमल मना अकाल, अकाल पड़ता है तो लोगों को खाने को मिलता नहीं, पीने को पानी नहीं मिलता, तो पेट पीठ से पिचक के लग जाता है। तो ये भी धारण करो और धारणा नहीं करते हैं तो बुद्ध रूपी पेट पीठ से लग जाता है। भूख बरसने वाले जाकर के राजा रानी बनेंगे, देखो बहुतों को सुख देते हैं, बहुतों को भरपूर कर देते हैं, और जो गरीब वो गरीब बनेंगे। गरीब वो बनेंगे जो ज्ञान जल भरते भी नहीं है और बरसते भी नहीं। तो गरीबों का पेट पीठ से लग जाता है। तो बच्चों को तो धारणा बहुत अच्छी रीति करनी चाहिए, ज्ञान सुनना और सुनाना एक अलग बात है, लेकिन उसको जीवन में धारण करना, प्रैक्टिकल में लाना, ये अलग बात हो जाती है। धारणा करने से प्राप्ति होगी, जो धारण करेगा वो दूसरों को धारण भी कराएगा। तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान कितना सहज है, तुम आप समझते हो। हमारे में भी आत्मा परमात्मा दोनों का ही ज्ञान नहीं था, तो पेट पीठ से लग गया था। मुख्य है आत्मा परमात्मा की बात, मनुष्य आत्मा को नहीं जानते हैं तो जो आत्मा को ही नहीं जानते वो परमात्मा को कैसे जानेंगे। पहले स्वयं को तो जाने, फिर स्वयं के बाप को जाने। इतने बड़े बड़े विद्वान आचार्य पंडित हैं, कोई भी आत्मा को नहीं जानते, किसी के मुख से कब सुना कि आत्मा ज्योति बिंदु है, सितारे मिसल है, और आत्मा की यादगार में हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, जो आत्मा के भ्रुकुटि के मध्य में टिकने की निशानी है, कभी किसी ने नहीं सुना है। अब तुमको मालूम हुआ है कि आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों से लेकर के एक जन्म तक अविनाशी पार्ट जुदा हुआ है। कोई आत्मा में 84 जन्मों का भी पार्ट होता है, कोई आत्मा में एक कम से कम एक जन्म का पार्ट होता है, तो जो चलता ही आता है। आत्मा अविनाशी है, पार्ट भी अविनाशी है। जिस आत्मा में, जिस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में एक जन्म का पार्ट भरा होगा, वो रंगमंच पर आकर एक जन्म का पार्ट भरेगा, और जिसमें 84 जन्म का पार्ट भरा होगा या कम जन्मों का पार्ट भरा होगा तो वो उतने जन्म का पार्ट भर जाएगा। तो बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, विलायत में भी जाते रहते हैं, बड़े बड़े गुरु हैं, परंतु ये नहीं समझते कि हमको आत्मा का ज्ञान ही नहीं। अलग अलग बातें बोलते रहते हैं, कोई कहते हैं आत्मा अंगूठा मिसल है, कोई कहते हैं आत्मा हवा है, कोई कहते हैं प्राणवायु है, प्राणवायु उदान वायु अपान वायु, अलग अलग तरीके से बोलते रहते। तुम समझते हो आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान उनको कैसे हो सकता है। बाप ही आकर आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते हैं, आत्मा कैसे ऑलराउंड पार्ट बजाती है ये किसी को पता नहीं है, वो तो आत्मा से परमात्मा कह देते हैं। अरे आत्मा 84 के चक्कर में आती है, परमात्मा भी क्या 84 के चक्कर में आता है? अगर आत्मा से परमात्मा तो 84 के चक्कर में आना चाहिए। फिर कह देते हैं परमात्मा जन्मण के चक्र से नहीं आया है, वो अभोक्ता है, अकर्ता है, तो कोई बात फिटी ही नहीं बैठती। आत्मा कैसे ऑलराउंड पार्ट बजाती है किसी को पता नहीं। तुम बच्चों को अभी आज से लेकर के अंत तक पूरा ज्ञान है, वो तो ड्रामा की आयु भी लाख वर्ष कह देते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है, तुम जानते हो इस बाप के रची हुई ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। कौन सी पुरानी दुनिया? जो झूठा ज्ञान सुनाती है, झूठी धारणाएं कराती है, सारी दुनिया में झूठी झूठ में रही, झूठ सच की रक्ति नहीं रह जाती। तो बाप जो ज्ञान यज्ञ रचते हैं उसमें ऐसी विनाश ज्वाला निकलती है कि ये सारा झूठ और झूठ खंड सब खलास हो जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ भी है वो सब भूल जाओ। इसलिए कहते हैं क्योंकि अब ये दुनिया देह और देह के संबंधों की दुनिया, पदार्थों की दुनिया, ये खलास होने वाली है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब विनाशी है। आज देखने में कुछ और आता है, कल कुछ और हो जाता है। अपन को आत्मा समझो, बाप को और शांति धाम शिव धाम को याद करो। ये तो है दुख धाम, ये भी तुम्हारे लिए नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार समझा सकते हैं। क्या शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, किसको किसको याद करना है? शांति धाम और सुख धाम को याद करना है और दुख धाम को भूल जाना। क्यों? क्योंकि जैसे को याद करेंगे जन्म जन्मांतर वैसे ही प्राप्ति करते रहेंगे। सुख धाम को याद करेंगे, याद का परसेंटेज सुखधाम की स्टेज का ज्यादा है तो जन्म जन्मांतर सुख में रहेगा, और कोई की याद की परसेंटेज शांति धाम की ज्यादा है तो जन्म जन्मांतर शांत स्टेज में रहेगा, और कोई की याद का स्टाप दुखों का है, ये दुख मिला वो दुख मिला, ये परेशानी वो परेशानी, बीमारी ये है वो है, रोते रहते हैं तो जन्म जन्मांतर उनको क्या मिलेगा? अंत मते सुगते हो जाएंगे। तो ये दुख धाम, सुख धाम और शांति धाम की बातें नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार तुम बच्चे समझा सकते हो। अब तुम ज्ञान से तो भरपूर हो, क्या 66 की वाणी है, मम्मा ने शरीर छोड़ दिया था 65 में ही शरीर छोड़ दिया था, और 66 की वाणी में क्या बोला? अब तुम ज्ञान से भरपूर हो, माने जितना ज्ञान था वो 66-67 तक की मुरलियों में बाबा ने बच्चों को दे दिया, बाकी मेहनत सारी है याद। जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटकर देह ही अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। कहना तो बड़ा सहज है परंतु अपन को आत्मा समझ और बाप को भी बिंदु रूप में याद करना है। क्या कहा? बाप का जो देह अभिमानी रूप है वो याद नहीं करना है, कौन सा रूप याद करना है? है देह अभिमानी रूप कौन सा? जब प्रजापिता ब्रह्मा में शिव की प्रवेशता नहीं होती है तो वो देह अभिमानी होता है, और जब उनमें शिव की प्रवेशता होती है तो क्या हो जाता है? निराकारी हो जाता है। तो कौन से रूप को याद करना है? जो बाप का निराकारी रूप बिंदु रूप है, देखने से भी दिखाई पड़ता है कि हाँ ये बिंदु है, जैसे और धर्म पिताएं भी सब बिंदु है। महात्मा बुद्ध का चित्र देखो, चेहरा देखो, क्राइस्ट का चेहरा देखो, गुरु नानक का चेहरा देखो, देखने से क्या लगता है? जैसे कि आत्मा में कोई देहभान है ही नहीं, जैसे दुनिया में है ही नहीं, परमधामवासी है। तो बाप को बिंदी रूप में याद करना है और अपने को भी बिंदी आत्मा समझ करके याद करना है। इसमें मेहनत है। बाप कहते हैं मैं जो हूं और जैसा हूं वैसे ही कोई मुश्किल से याद कर सकते। जैसे बाप होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। तो अपने को जाना तो बाप को भी जान जाते। आज मध्यंत का ज्ञान तुम बच्चे जानते हो और पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है। तुम पढ़ने वाले बहुत हो। यह राजयोग है। इस राजयोग में राजाई की पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे कैसे बाप के सहयोगी बनते हैं और बाप उन बच्चों के द्वारा कैसे राजधानी स्थापन करते हैं वो तुम बच्चे जानते हो। बाकी ये साथ साथ ही सब है। भक्ति मार्ग की सामग्री समझाने के लिए हमको कहना पड़ता है। क्या समझाने के लिए? शास्त्रों की जो बातें हैं उन बातों में जो सार है उस सार को समझाने के लिए हमें ये शास्त्र रेफर करने पड़ते हैं। शास्त्रों की बात कहनी पड़ती है। बाकी इनमें धारणा की कोई बात है नहीं। शास्त्रों में भी है ब्रह्मा की रात अर्थात घोर अंधेरा। कहां की यादगार? संगम युग की यादगार है। ब्रह्मा जब ज्ञान सूर्य को भूल जाता है इधर उधर बुद्धि भटक जाती है बच्चों में तो अंधेरे में चला जाता है। जब ब्रह्मा ही अंधेरे में तो सारे ब्राह्मण भी अंधेरे में। अज्ञान का अंधेरा उनकी आंखों में छाता रहता है। घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि हो जा रही है। अभी अभी बाप के ऊपर निश्चय बैठेगा और अभी अभी निश्चय बुद्धि हो जाएगी। अभी अभी उनको ज्ञान सूर्य दिखाई पड़ेगा और अभी अभी वो ज्ञान सूर्य बादलों के आ जाने से लोप हो जाते। तो बाप कहते हैं ये ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा के दिन का राज भी समझना। संगम युग की ही बातें हैं। शाम के 7 बजेंगे और अंधेरा होता जाएगा। सनसेट पॉइंट यादगार बनी हुई है। कहा? माउंट आबू में यादगार बनी हुई है। ज्ञान सूर्य छिपता है और अज्ञान का अंधेरा ब्राह्मण दुनिया में शुरू हो जाता है। 12 बजे तक कहेंगे घोर अंधेरा, सब अंधेरे में डूब जाते, सारी दुनिया अंधेरे में डूब जाती। 12 बजे के बाद फिर नए दिन की शुरुआत होती है। तो कोई देशों के लिए तो 12 बजे के बाद ज्ञान सूर्य उदय होता होगा ना। ये फिर है बेहद की बात माना। विदेशी आत्माएं ज्ञान सूर्य को पहले पहचान लेती है तो उनके लिए सब सोचना पहले हो जाता है। भक्ति मार्ग का घोर अंधेरा फिर बाप आकर घोर सोचना करते हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहते हैं परंतु समझते थोड़े ही हैं कि ब्रह्मा कब अंधेरे में आता है और ब्रह्मा कब उजाले में आता है। है तो सारी मनुष्य शक्ति किसकी औलाद? किसकी औलाद है? सारी मनुष्य शक्ति किसकी औलाद है? ब्रह्मा की औलाद है ना। तो ब्रह्मा ही जब अंधेरे में आ जाए तो सारी शक्ति अज्ञान अंधकार में डूब जाते। मैंने पहले ज्ञान के सोजरे में ब्रह्मा को आना पड़ेगा। एक जब अंधेरे से उजाले में आता है तो सारे ही उजाले में आ जाते। एक जब अंधेरे में डूबता है तो सारी दुनिया डूबने लग पड़ती। एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं और एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। है कहां की बात? अभी संगम युग की ही बात है। अभी संगम युग में सारी मनुष्य सृष्टि पतित है या पावन है? क्या है? पतित दुनिया में सब पतित होते, पावन दुनिया में सब पावन होते। तो अभी सारी मनुष्य शक्ति पतित है, अंधेरे में है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी अंधेरा है। पूछते रहते कब क्या होगा, विनाश कब होगा, नई दुनिया का संगठन कब बनेगा। तो बाप ज्ञान सूर्य है। ज्ञान सूर्य जब गर्म होता है तो सागर में से जो भाप उठती है उससे बादल तैयार हो जाते। चंद्रमा रोशनी किससे लेता है? सूर्य से रोशनी लेता है। तो ये ज्ञान की रोशनी जो ज्ञान सूर्य से मिलती है, ज्ञान चंद्रमा को, वो ज्ञान चंद्रमा ज्ञान सूर्य से रोशनी क्यों नहीं लेता, अंधेरे में क्यों रहता है? जरूर चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी का परछाया पड़ता है। क्या? पृथ्वी माने धरणी, धरणी माने कन्याएं माताएं। जो ज्ञान में चलने वाली कन्याएं माताएं हैं उनका, उनकी छाया, परछाया ब्रह्मा रूपी ज्ञान चंद्रमा के ऊपर पड़ जाती है और कन्या माताओं के प्रभाव में आ जाता है और ज्ञान सूर्य से विलग हो जाता है, अंधेरे में आ जाता है। ये रात और दिन आधा आधा होता है। आधा समय ब्रह्मा का दिन, आधा समय ब्रह्मा की रात। सतयुग के बाद फिर सीढ़ी उतरना होता है। तो कितना सहज समझाया जाता है परंतु मनुष्य समझते कहां है? अपन को अथॉरिटी कितनी बड़ी समझते हैं, वेदों शास्त्रों की अथॉरिटी वो या भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग की अथॉरिटी ठहरी, उनको ऑलमाइटी अथॉरिटी तो नहीं कहेंगे। किनको? जो भी वेद शास्त्रों की अथॉरिटी है उनको ज्ञान मार्ग की अथॉरिटी नहीं कहेंगे, वो सिर्फ अथॉरिटी है भक्ति मार्ग की। बाप को ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है, वो ऑलमाइटी बाप ही अथॉरिटी है ना कि ये शास्त्र आदि पढ़ने वाले। वो तो ऑलमाइटी का अर्थ भी नहीं समझते, वो तो समझते हैं कि वो बड़े समर्थ है। भगवान इतने समर्थ है कि जो चाहे सो कर सकते हैं। अब भगवान क्या जादूगरों बाजीगरों की तरह कोई छुमंतर काली करेगा क्या? 66 की वाणी का दूसरा पेज। बाप तो कहते हैं जैसे तुम इस ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हो, ये 5000 वर्ष का जो ड्रामा है ना, इसमें जैसे तुम बंधन में बंधे हुए हो ऐसे मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। मैं भी ड्रामा के वर्खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता, जो चाहे सो नहीं कर सकता। जैसे तुम बंधे हुए हो, तुम्हारी आत्मा में अगर 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है ड्रामा में तो तुम 84 जन्म लेने ही है तुम्हें। ऐसे ही मेरी आत्मा में भी 84 घंटों का तो पार्ट नहीं बंधा हुआ है, लेकिन मैं इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ जरूर हूं। एक जन्म के लिए आकर के तुम बच्चों को मारा मारा करके बनाता हूं, ये मेरा पार्ट है ज्ञान सुनाने का और पतितों को पावन बनाने का। बात पर तो कितनी आफतें आती रहती है, द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक कितनी आफतें आती है भारत पर, कितने आक्रमण होते हैं विदेशियों के। तो क्या मैं घड़ी घड़ी आता रहता हूं? नहीं, मेरे पार्ट की भी लिमिट है। हर युग में मैं नहीं आता हूं, मैं सिर्फ कलयुग के अंत और सत्ययुग का आदि जब होना होता है तो संगम पर आता हूं, जब ये शक्ति पूरा दुग्धाम बन जाती है। पूरा दुग्धाम बने तब मैं आऊं, एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता मेरे आने में, इतना तक ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट बंधा हुआ है। यह है हाईएस्ट पाप का री इंकार्नेशन। फिर नंबर 12 और सब आते हैं कम ताकत वाले, माने जो सब बापों का बाप है, सब धर्म पिताओं का पिता है, वो है फर्स्ट नंबर धर्म पिता। अपर नंबर देवता धर्म की स्थापना करता है। बाद में जो द्वापर युग से धर्म पिताएं आते हैं वो है सब नंबर बाप, नंबर वार सब आते ही रहते। शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही होता है। यज्ञ के आदि में जो स्वरूप था ज्ञान देने वाला ज्ञान सागर, वो तो आदि में पार्ट बजा करके चला गया, वो था अव्वल नंबर। उसके द्वारा जो बीजू की स्टेज में पार्ट बजाया गया, उससे कराची में नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग का नजारा एक सैंपल तैयार कर दिया गया। ये पार्ट है मेरा, क्या नरक को स्वर्ग बना देगा। बाद में ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन हुआ, तो ब्रह्मा के द्वारा जो ब्राह्मण धर्म स्थापन हुआ वो अव्वल नंबर कहेंगे या द्वयम नंबर कहेंगे? अपर नंबर तो नहीं कहेंगे। जो नंबर वन द्वारा काम होता है वो नंबर दो के द्वारा काम नहीं हो सकता, स्वर्ग तो नहीं स्थापन होता, क्योंकि तो ब्राह्मण जो पैदा हुए ब्रह्मा के द्वारा वो दो प्रकार के ब्राह्मण पैदा हो गए। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण भी बन गए और गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे भी ब्राह्मण बन गए, मिक्स हो गए। इसलिए ब्राह्मणों की 9 प्रकार की कुरियां गाई जाती है। माना जो 9 मुख्य धर्म है सारी दुनिया में सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक स्थापन होने वाले, उन 9 मुख्य धर्मों में से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण धर्म में आती है। और जो जिस धर्म से आता है, जितने ऊंचे नंबर वाले धर्म से आता है उतनी ही धारणा करता है। जिन ब्राह्मणों में कम धारणा होती है वो बाद वाले नंबर के गिने जाते हैं, जिनमें ऊंची धारणा होती है वो अव्वल नंबर के सूर्यवंशी गिने जाते हैं, द्वयम नंबर की धारणा होगी तो चंद्रवंशी गिने जाएंगे, तीसरे नंबर की धारणा होगी तो इस्लामी वंशी गिने जाएंगे। तो नंबर वार सब आते हैं कम ताकत वाले। ड्रामा में हीरो हीरोइन पार्टधारी होते हैं, फिर पिछाड़ी में सब नंबर वाले रहते हैं। क्या कहा, ड्रामा कोई होता है तो उसमें अव्वल नंबर पार्टधारी कौन होता है?